ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुकर उवाच यतश्चान्तरहितो नन्तः तस्यै कृत्वा दिशे नमः विद्याधरपति विद्याधरचित्तकेतु चचार गगनेचर संलक्षण वर्षलक्षण अव्याहत बलेन्द्रिया स्तूयमानो महायोगी मुनि सिद्धचारण कुलाचलेन्द्र द्रोणीषु नाना संकल्प सिद्धिषु रेमे विद्याधर स्त्रीभि व्यापयन हरिमीश्वरम् एकदा सविमानेन विष्णुदत्तेन भास्वता गिरिशं ददृशे गच्छन् परितं सिद्धचारणैः आलिङ्गाङ्कीकृतां देवीं बाहुना मुनिसंसदि उवाच देव्या स्मृवत्या जहासोच तदन्ति चित्रकेतुर्वाच एष लोकगुरुः साक्षात् धर्मं वक्ता शरीरिणाम् आस्ते सब मुख्य सभायां वै मिथुनी भूय भार्यया जटाधरस्तीव्रतपः ब्रह्मवादी सभापति अंकीकृत्य स्त्रियं चास्ते गता भी प्राकृतो जथा प्रायश प्राकृतश्चापि स्त्रियं रहसि बिभ्रति अयं महाव्रतधरो बिभर्ति सदसि स्त्रियं। श्री शुक उवाच भगवान् अपि तच्छ्रुत्वा प्रहस्यागाधधीर्निरप तूष्णीं बभूव सदसि सव्याश्च तदनुव्रता। अतद्वीर्ज विदुषि ब्रुवाणे बहुव शोभनम् उषाह देवी धृष्टाय निर्जितात्माभिमानिने। श्री पार्वती उवाच अयं किमधुना लोके शास्ता दण्डधरः प्रभु अस्मद्विधानां दुष्टानां निर्लज्जानां च विप्रकृत न वेद धर्मं किल पद्मजोनि न ब्रह्मपुत्रा भृगुनारदाद्या न वै कुमारः कपिलो मनुश्च ये नो निषेधं ततिवर्तिनं हरम् येषाम् अनुध्येय पदाब्ज युग्मम् जगद्गुरुम् मङ्गलमङ्गलम् स्वयम् या छत्रबन्धु परिभूय सूरिन् प्रशास्तिष्ठस्तदयम् हि दण्ड्या नायमर्हति वैकुण्ठ पादमूलोपसर्पणम् सम्भावितमति स्तब्ध साधुभि पर्युपासितम् अतः पापीयसीम् योनिम् आसुरीम् जाहि दुर्मते यथेह भूयो महताम् न कर्ता मूढ़ किल विषम् एवं सप्तश्चित्रकेतु विमानादौरुह्यस प्रसादयामास प्रसादयामास सतीम् मूर्ध्ना नम्रेण भारत चित्रकेतुर्वाच प्रतिगृह्णामि ते शापम् आत्मनोञ्जलिनाम्बिके देवैर्मर्त्याय यत्प्रोक्तम् पूर्वदिष्टम् हि तस्य तत् संसारचक्रये तस्मिन् जन्तुरज्ञानमोहितः नाम्यत् सुखम् च दुःखम् च भुङ्क्ते सर्वत्र सर्वदा नैवात्मान परश्चापि कर्ता स्यात् सुखदुःखयो कर्तारम् मन्यते आत्मानम् परमेव च एकसृजति भूतानि भगवान् आत्ममायया येषाम् बन्धम् च मोक्षम् च सुखम् दुःखम् च निष्कलः न तस्य कश्चित् दयित प्रतीपो न ज्ञात न तस्य कश्चित् दयित प्रतीप न ज्ञाति बन्धुर् न परः न च स्वः समस्य सर्वत्र निरञ्जनस्य सुखेन रागः कुत एव रोषः इतना ही पढ़िए।
श्रीशुक उवाच यतः चान्तर्हितोऽस्मि
च अन्तर्हितः अन्तर्हित हुए अनन्तः अनंत देव तस्यै उसी दिशे दिशा को नमः कृत्वा नमस्कार करके चित्रकेतु विद्याधर जो विद्याधर बन गए थे चचार भ्रमण करने लगे गगने चरा आकाश मार्ग से स वे विद्याधर पति चित्रकेतु महाराज लक्षम वर्ष लक्षणाम लाख वर्ष से लाख का गुना करेंगे अर्थात कई कोटि वर्ष करोड़ों वर्ष अव्याहत बलेन्द्रिय उनके शरीर की शक्ति कम नहीं हुई और उनकी इंद्रिया नित्य बनी रही आंख नाक कान सब बिल्कुल अच्छा रहे करोड़ों वर्ष तो स्तूय माना उनकी स्तुति की जाती थी क्योंकि महायोगी महान योगी थे। भगवान कृष्ण ने उनका मन रमा हुआ था। मुनि भी मुनियों द्वारा सिद्ध चारण सिद्धों और चारणों द्वारा उनकी स्तुति की जा रही थी। कुलाचलेन्द्रा कुलाचल में सबसे श्रेष्ठ अर्थात मेरु पर्वत की घाटियों में नाना संकल्प सिद्ध है सिद्धि से जहां पर अनेक प्रकार के संकल्पों की सिद्धि हो जाती थी। अपने आप जैसा संकल्प किया जाता था वो सब वस्तुएं प्राप्त हो जाती थी। तो ऐसी घाटियों में वे रमण कर रहे थे। विद्याधरा स्त्री भी विद्याधरों की स्त्रियों के साथ उन स्त्रियों से गापयन गवाते थे। हरिम भगवान कृष्ण ईश्वरम ईश्वर की भगवान का कीर्तन कराते थे। उनकी आसक्ति केवल श्रवण कीर्तन में थी। विद्याधरों की परम सुंदरी स्त्रियां उनके साथ थीं, लेकिन किसी में कभी कोई आसक्ति नहीं थी। आसक्ति थी श्रवण कीर्तन में गापयन हरिमेश्वरम। परमेश्वर भगवान कृष्ण के गुणों को सुनते रहते थे गवाते थे। एकदा एक बार की घटना है। सह ऐसे अनासक्त चित्रकेतु महाराज विमान ने न एयरप्लेन से भास्वता जो बहुत चमक रहा था जगमगा रहा था विष्णु दत्ते न स्वयं भगवान ने दिया था उस पर चढ़कर वे अनेक सिद्ध चारणों के साथ और विद्याधरों की स्त्रियों के साथ जा रहे थे। जाते जाते वे कैलाश के ऊपर गए और वहां उन्होंने विमान नीचे करने पर थोड़ा नीचे किए तो देखे भगवान शिव को आलिंगन की कृतां देवीम भगवान शिव देवी गौरी का आलिंगन किए थे, अपने बांह से पकड़े थे। मुनि संसदी मुनियों की सभा में वो खचाखच मुनि लोग बैठे थे वहां, जिसमें चार भाई सनक, सनंदन, सनत कुमार थे, नारद जी थे, वहीं प्रहलाद महाराज भी बैठे थे भगवान शिव का सत्संग करने के लिए। और उन्हीं मुनियों की सभा में भगवान शिव अपनी प्रिया को अपनी गोद में बैठाए थे और प्रवचन कर रहे थे। सब ऋषि मुनि सुन रहे थे। तो यह देख करके चित्रकेतु महाराज को हंसी आ गई, वे ठठा करके हंसने लगे। विमान बिल्कुल नीचे उतरा था, उसी विमान पर ही वे हंसने लगे। अरे ये तमाशा देखो, ऐसा कहकर बहुत हंसने लगे। वास्तव में वे तो भगवान भगवान शिव के मित्र हैं, वे प्रशंसा कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, लेकिन मजाक गलत समय में कर रहे थे, सभा में कर रहे थे और उनकी पत्नी के सामने, भगवान शिव की पत्नी के सामने, तो अपराध कुछ बन गया है। मजाक कर रहे थे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे हैं कि यह दो मित्रों में मजाक था, तो कहने लगे ऐसा लोग गुरु साक्षात, देखो ये सारे जगत के गुरु हैं, ऐसा लोग गुरु साक्षात धर्मम वक्ता सज्ञ, और समस्त प्राणियों को, देवताओं को भी धर्म का उपदेश करते हैं, कर्तव्य सिखा रहे हैं, दूसरों को कर्तव्य सिखा रहे हैं। और अपने आप इनको देखिए, सभा के बीच में आस्ते मुखिया, सभा में सबसे प्रधान है, और बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, अपने वाइफ को गोद में लेकर। देखो इनको, मिथुनी भूय भार्या, अपनी भार्या को चिपका करके गोद में बैठे हैं और इधर प्रवचन भी कर रहे हैं। तो ये प्रशंसा है भगवान शिव की, लेकिन पार्वती जी निंदा समझ ली। इसमें प्रशंसा है कि इतने बड़े जितेंद्रिय हैं भगवान शिव की परम सुंदरी श्री पार्वती जी उनकी गोद में है, लेकिन उनमें कोई विकार नहीं, प्रवचन कर रहे हैं और सारे ऋषि महर्षि सुन रहे हैं, बैठे हैं। तो चित्रकेतु महाराज पहले हंसे जोर से, फिर ये सब बातें कहने लगे। देखो इनका वेश, देखो जटा धर, कितनी बड़ी जटा बढ़ाए हैं, तीव्र तपा, ये महान तपस्वी हैं, ब्रह्मवादी सभापति, वेद पर विचार करने वाले, वेद के अनुसार चलने वाले, भगवान के भक्त, इन भक्तों के सभापति हैं। और अंकीकृत स्त्रियम आस्ते, और गोद में अपने पत्नी को बैठाए हैं, गत ही प्राकृत हो जाता है, उनको लज्जा नहीं है। जैसे प्राकृत व्यक्ति साधारण आदमी होता है, बूढ़ व्यक्ति, वैसे स्त्री को गोद में बैठाए। अरे साधारण आदमी भी ऐसा काम नहीं करेगा, वे कहते हैं प्राय सह प्राकृतश्चापि स्त्रियम रहसि विभ्रति, साधारण मनुष्य भी स्त्री को एकांत में गोद में लेगा, एकांत में उसके साथ बैठता उठता है। और ये तो महाव्रतधर, ये महाव्रतधारी है, और सभा में स्त्री को लेकर के बैठे। इसमें बहुत प्रशंसा है भगवान शिव की कि देखो इनकी ईश्वरता ही, स्त्री साथ में है, गोद में है, लेकिन प्रवचन कर रहे हैं, कोई विकार नहीं है। कामदेव तो जल गया है इनके नेत्रों से, क्या विकार होगा। जिनका तीसरा नेत्र पड़ते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया, उनमें काम बसना कहां से आ सकती है। लेकिन फिर भी देखो इनकी दशा, मजाक कर रहे हैं चित्रकेतु महाराज, ये देखो कैसी दशा है, ये सभा में ऐसे बैठा जाता है। अरे स्त्री को दूर बैठाते या चाहे श्रोताओं में बैठा देते, गोद में लेकर के और वेदांत पर प्रवचन कर रहे हैं। भगवान का शिव का चरित्र वास्तव में उटपटांग है, लेकिन सभी उसको नहीं समझ पाते। सभा में ऐसे प्रवचन किया जाता है, और वो भी मुनियों की सभा में, जहां एक से एक उद्धरेता ब्रह्मचारी बैठे हैं, जहां नारद जी हैं, जहां सनकादि हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चार भाई, और श्री प्रहलाद महाराज भी सभा में बैठे हैं। भगवान शिव का सत्संग करने के लिए प्रायः बड़े बड़े वैष्णव आते थे, तो समस्त वैष्णवों की सभा में ये देखो इनका तमाशा, ये महाव्रतधारी है, महाव्रत धारण, बहुत बड़ा व्रत धारण किए। महाव्रत क्या है, श्रील प्रभुपाद जी हम लोगों को चार व्रत बताए हैं, उसको रूल्स कहते हैं, यम और नियम, नियम रेगुलेशन को कहते हैं, यम और नियम। तो चार यम है मुख्य, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना है। उसमें उसको संक्षेप में प्रभुपाद ने कहा है नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग। नो गैम्बलिंग का अर्थ है कि असंग्रह, चोरी नहीं करना है, किसी दूसरे के हक का धन नहीं लेना है। जुआ आदि खेलने में मनुष्य चाहता है कि दूसरे का धन हमारे पास आ जाए। नो इंटॉक्सिकेशन, मद्यपान नहीं। और चौथा है अवैध स्त्री संग नहीं, या अवैध पुरुष संग नहीं। ये चार नियम है, ये महाव्रत है। इसको शास्त्रों में कहा गया है महाव्रत, जो किसी भी समय किसी भी देश में खंडित नहीं किया जा सकता है। इसको अहिंसा व्रत कहते हैं। जैसे प्रभुपाद जी सिखाए हैं हम सबको नो मीट ईटिंग, तो ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे शहर में चले गए, दूसरे देश में चले गए तो थोड़ा मीट ईटिंग कर लेंगे, कोई बात नहीं। किसी भी देश में नियम पालन करना है, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी मांस नहीं खाना है। मांस नहीं खाएगा आदमी तो हिंसा अपने आप रुक जाएगी, पशुओं की हत्या बंद हो जाएगी। कितने लोगों को इसकी बहुत बड़ी चिंता होती है, यदि हिंसा नहीं होगी पशुओं की तो हम मर जाएंगे, हम बिना मांस के कैसे रहेंगे। लेकिन वैष्णवों को श्रील प्रभुपाद जी ने ये व्रत सिखाया है, कहीं भी रहो कभी भी मांस नहीं खाना, भगवान का प्रसाद खा लेना और प्रसाद खा करके संतोष करके जीवन बिताना। और मद्यपान नहीं, नो इंटॉक्सिकेशन, ये सब यम है। और किसी भी दशा में कहीं भी अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री के साथ कोई संबंध नहीं करना। और ब्रह्मचारियों के लिए, वानप्रस्थियों के लिए तो स्त्री मात्र ही, कोई नहीं, कभी नहीं स्त्री संग करना, सोचना नहीं। और गृहस्थों को भी सिखाया कि केवल अपनी पत्नी से संतान उत्पन्न करने के लिए संग करना है, ऐसे फालतू नहीं। केवल इंद्रिय सुख के लिए संपर्क नहीं करना चाहिए, यह महाव्रत है, इस व्रत का खंडन नहीं होना चाहिए, कभी भी मिटाना नहीं चाहिए। बड़े सावधानी से अपने व्रत का निर्वाह करना चाहिए। तो चित्रकेतु महाराज कह रहे हैं ये महाव्रतधारी है, महाव्रत धरा, इनकी जटा बढ़ी हुई है, वस्त्र भी नहीं पहने हैं, ये कम पहने हैं, पर इनकी प्रवृत्ति देखो, स्त्री को कोई लेकर भाग जाएगा उसको दूर रखने से क्या हर्ज है, लेकिन ये सभा में बैठे हैं, सभा में, इस मुनियों की सभा में स्त्री को अपने गोद से चिपका कर बैठे हैं, हंस रहे थे चित्रकेतु महाराज। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान इसको सुने, भगवान शिव इसको सुन करके हंसने लगे, तुष्णी चुप रह गए, कोई प्रतिकार नहीं की किसी, क्योंकि ये अगाध बुद्धि वाले हैं, उनकी बुद्धि की इयत्ता नहीं है, इतनी बुद्धि है, वे समझ गए कि ये हमारे मित्र हमसे मजाक कर रहे हैं, लेकिन मजाक गलत स्थान पर कर दिए, गलत परिस्थिति ने। इस बात को सुन करके शिव जी को दुख नहीं लगा, वे प्रसन्न हुए, लेकिन उनकी पत्नी को दुख लग गया। वो तुरंत क्रुद्ध हो गई, उनको पता नहीं था कि बहुत बड़ा भक्त है, और उनकी उनके बात का तात्पर्य भी माता जी नहीं समझ पाई। इस पर प्रभुपाद जी प्रपर्ट लिखे हैं कि इतना बड़ा समाज है, लेकिन बहुत बड़े समाज में भी स्त्री को समझ नहीं आई, चित्रकेतु की बातों को नहीं समझ पाए। तो इससे सिद्ध होता है, प्रभुपाद जी लिखे हैं कि स्त्रियों को कम बुद्धि होती है, भगवान शिव के साथ रहने वाली देवी को क्रोध आ गया है, बहुत क्रोध, और क्रोध में वो कहने लगी। इस समय संसार का यही दंडधर है क्या, जो लोग गलती करेंगे उनको दंड देने वाला यही बना है, और धर्म का रहस्य ब्रह्मा जी नहीं जानते हैं, ब्रह्मा जी कभी शिव जी भगवान शिव को मना नहीं किए, इस तरह से उच्छृंखल व्यवहार के कारण वे कभी मना नहीं किए। यहां आते रहते हैं नारद जी, भगवान कपिल देव, बड़े बड़े ब्राह्मण सब आते हैं यहां, लेकिन कभी वे लोग मना नहीं किए। तो शिव जी को यही मना करने वाला है क्या, यही जज नियुक्त हुआ है, तुम अपनी स्थिति नहीं देखते हो और जहां तहां बोलते हो, बस बोलने का तुमको शौक है, यह केवल शिव जी का और हमारा ही अपमान नहीं है, ये अपमान है सारे ऋषियों का, मुनियों का। यहां बड़े बड़े विद्वान मुनिजन बैठे हैं, उनका अपमान है, क्योंकि सब चुपचाप रहते हैं। भगवान शिव को कभी मना नहीं किए कि ऐसे, ये आज की बात नहीं है कि स्त्री लेकर के प्रवचन कर रहे हैं, रोज की बात है। और सभी आते ही रहते हैं मुनि लोग, तो कभी कोई नहीं टोका भगवान शिव को कि ऐसा आचरण मत कीजिए। यही दंडधर बना है क्षत्रियाधम, क्षत्रिय है, ये भी ब्राह्मण नहीं है, और क्षत्रिय होकर के इतना उदंड हो गया, ये अपने को बहुत बड़ा समझ रहा है, इसको अभिमान हो गया है अपनी उपलब्धियों से। ये विद्याधर का राजा बन गया है, इसका अभिमान बढ़ गया है, अपने को बहुत बड़ा समझ रहा है, धीष ढीठ है, यह दंड देने योग्य है। सब सभा को सुना करके माता जी बोल रहे, यह दंड देने योग्य है। वो बोलती जा रही थी, माता जी भगवान सुन रहे थे, तो उन्होंने तो चित्रकेतु की बात से कोई क्रोध नहीं किया, शांति रहे, शांतिपूर्वक सुनते रहे। जब माता पार्वती जी चंडी बनकर के अब उगलने लगी, ये सबका अपमान कर रहा है, हमारे पति देव का तो किया ही, इसको दंड देना चाहिए, ये दंड के योग्य है, इसको अपनी उपलब्धियों का गर्व है, इसको जो भगवान ने विमान दे दिया है, अपने विमान का और विद्याधरों की लड़कियों के साथ घूम रहा है, इसको अपने जितेंद्रियता का अभिमान है, इसको अभिमान है कि मैं बहुत जितेंद्रिय हूं। केवल पार्वती जी का उद्गार है, वास्तव में महाराज चित्रकेतु ऐसे नहीं थे, वो तो परम वैष्णव थे। वो बोल रहे थे भगवान शंकर को अपना फ्रेंड समझते थे, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से मजाक कर सकता है, लेकिन पूर्व कर्म के अनुसार वो मजाक हो गया, सभा के बीच में स्त्री को दुख लग गया। कभी कभी किसी सभा में या कहीं पति के साथ पत्नी का अपमान होता है तो वो रोने लगती है। ये ध्वनित हो गया ना कि मान लीजिए शिव जी को बुद्धि नहीं है, तो इनको कौन बुद्धि है, आकर के शिव जी के गोद में बैठ गई, वो अपने आप ऐसा अर्थ समझ ली कि ये शिव जी का अपमान है, मेरा अपमान है और सभी सभासदों का अपमान है, इसलिए दंड देना है। क्या दंड? यह क्षत्रिय भगवान के चरण में बैठने लायक नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने कह दिया कि अतः पापी असीम जोनि आश्रिम जाहि दुर्मते। अरे दुर्मते, दूषित बुद्धि वाले, तुम असुर शरीर में जाओ, राक्षस बन जाओ। क्रोध से माता जी बोल रहे थे। इसलिए अब तुम अपराध नहीं कर पाओगे बड़े बड़े लोगों का। जब असुर बन जाओगे तब तुम अपराध नहीं कर पाओगे। लेकिन बहुत तमतमा करके क्रोध में साप दे रहे थे, और साप देने लगी तो बीच में रुकी नहीं, भगवान शिव के तरफ देखी भी नहीं। ये शांत हैं, हमको चुप रहना चाहिए। कहीं पर किसी भी स्त्री को अपने पति का रुख देखना चाहिए। अगर ये क्रोध नहीं कर रहे हैं तो मैं क्यों कर रही हूं। लेकिन पार्वती जी ने और स्वभाव की ओर भी नहीं देखा। सभा में जितने भी ऋषि मुनि बैठे थे वे सब चुप रह गए। यदि शिव जी की निंदा होती तो कोई न कोई उठ करके प्रतिकार करता, लेकिन शिव जी की निंदा नहीं हो रही थी। जैसे दक्ष प्रजापति शिव निंदक हैं, वैसे चित्रकेतु महाराज शिव जी के निंदक नहीं है, तो उनके मित्र हैं। इसीलिए सभा में बैठे हुए सब लोग तद अनुव्रता शिव जी के अनुगामी बने रहे, अर्थात वे भी सब चुप रह गए। और माता पार्वती को यह समझ में आया कि ये मनुष्य क्षत्रिय यहां आकर के इस तरह बोल रहा है। तो उन्होंने कहा सबसे पहले कि न वेद धर्मम किल पद्मयोनी। पद्मयोनी ब्रह्मा जी को कहते हैं, पद्म से जिनका जन्म हुआ है, कमल से जिनका जन्म हुआ है। तो कमल जन्मा श्री ब्रह्मा जी धर्म नहीं जानते हैं, क्योंकि शिव जी को वे कभी नहीं सिखाए कि सभा में स्त्री को लेकर नहीं बैठना चाहिए। न ब्रह्मपुत्र भृगु नार दाद्या, और न तो ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु जी और नारद जी, ये लोग धर्म का रहस्य नहीं जानते। यही धर्म का रहस्य जानने वाला निकल गया। तुम बहुत ज्यादा बोल रहे, जो बहुत ज्यादा बोल दिए। इसीलिए माता जी ने साफ दे दिया, तुम असुर योनि में चले जाओ, दानवी जोनी में, राक्षस की जोनी, राक्षस की जाति। तो तुम भगवान के चरण में बैठने लायक नहीं हो। तुमको अभिमान हो गया है कि मैं भगवान के पास रहता हूं। भगवान अनंत देव ने तुमको विमान दिया है, इसका तुमको अभिमान है, और अनेक सिद्धियां प्राप्त है तुमको, बहुत बड़ा भोग प्राप्त है, फिर भी तुम भोग में आसक्त नहीं हो, ऐसा तुम सोचते हो कि इतनी देवांगनाओं के साथ रहने पर भी तुम उनमें आसक्त नहीं हो, इसका तुमको अभिमान हो गया है, इतना ढीठ बन गए हो। अभिमान जहां हुआ सो हुआ ठीक है, लेकिन यहां हमारे घर कैलाश में आकर के तुम अपने को बड़ा बना रहे हो, अपने को सबसे बेस्ट समझ रहे हो। तो तुम असुर योनि में जाओ, वहां तुम्हारी शान पूरी हो जाएगी। साप दे दिया, भगवान शिव सुन लिए, रोक नहीं पाए, क्योंकि स्त्री जब क्रोध करती है, क्रोध में बोलने लगती है, तो अब पति भी बेचारे क्या करे। रणचंडी बन गई तो बोलने दो। तो बोलते बोलते वो साप दे दी, बहुत बड़े महान भक्त को असुर होने का साप। उसके बाद चित्रकेतु महाराज विमान से उतरे, नीचे आए, आकर के माता जी को प्रणाम किए और भगवान शिव को प्रणाम किए। कहने लगे, माता जी मेरी बात से आपको दुख लग गया है, लेकिन वास्तव में आपको दुख देना यह मेरा उद्देश्य नहीं था, लेकिन आपने हमें साप दे दिया, हमें इसका कोई दुख नहीं है, ये हमारे पूर्व कर्म के अनुसार निश्चित था, ये भगवान की योजना थी, मैं समझ गया, क्योंकि देवताओं के द्वारा मनुष्य के लिए जो कह दिया जाता है उसके पूर्व दृष्ट का फल होता है, पूर्व कर्मों का फल जिसको भगवान देते हैं। तो आपके मुख से जो कुछ निकला या मेरे भाग में लिखा हुआ था, लेकिन मुझे इसका दुख नहीं है कि मैं विद्याधर था और असुर बन जाऊंगा। इस संसार में जीव अज्ञान से मोहित है, भौतिक जगत में माया उसे अपने तीन गुणों से बांध करके नचाती है, कब जीव को सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, साप मिलेगा, अनुग्रह मिलेगा, कुछ पता नहीं है। ये तो संसार ऐसा है, एक नदी की विशाल धारा के समान है, उसमें सारे जीव बहे जा रहे हैं। तो कर्म तो विचित्र है जीवों का, उसके अनुसार कभी किसी को सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। तो ये सब होना था भगवान की इच्छा से। आपको मैं दोष नहीं देता, मैं क्षमा मांग रहा हूं साप मिटाने के लिए नहीं, क्षमा इसलिए मांग रहा हूं कि आपके हृदय में दुख हो गया, आप रंज हो गई, क्रोध आ गया, क्रोध तो आपको भी जला रहा है, लेकिन हमको ये भोगना था। अब तक मैं विद्याधर था और आगे असुर बनूंगा, तो उसकी क्षमा नहीं करा रहा, अंबिके कह रहे हैं मां, क्योंकि जगन माता है। माता जी आप प्रसन्न होइए, हमें क्षमा कीजिए, मैं बोल दिया तो मेरी बात से आपको दुख लगा। महाराज चित्रकेतु को थोड़ा भी दुख नहीं लगा कि हमको स्वर्ग से गिरना पड़ेगा, असुर योनि में जाना पड़ेगा, उल्टे प्रणाम किए शिव जी को, माता पार्वती को, और बातों से दुख लगा इसको क्षमा करा रहे हैं। ऐसा नहीं कहे कि आप अपना साप लौटा लीजिए, कई संसार में क्या दुख है क्या सुख है, तो सपना जैसा है, सपने में कोई किसी को खिला दे या सपने में वो देखे कि हमको कोई मार रहा है, उसमें दोनों में कोई अंतर नहीं। ऐसे ही संसार में कभी कोई साप दे दे, कोई वरदान दे दे, दोनों एक ही है, यहां का सुख और दुख सब एक समान है। तो इतना कह करके चित्रकेतु महाराज वहां से चले गए, विमान पर चढ़ करके चले गए प्रणाम करके। भगवान शिव देखे महानता, चित्रकेतु की महानता, तो वे मुग्ध हो गए। जब चित्रकेतु महाराज चले गए तब उसी सभा के बीच में सबके सामने भगवान शिव बोलने लगे पार्वती जी से, दिष्टवत् से सुश्रोणी संबोधन की, सुश्रोणी हे सुंदर नितंब वाली, हे शोभन नितंब, तुम शरीर से सुंदर हो लेकिन तुम चित्रकेतु के समान सुंदर नहीं हो, भक्ति और ज्ञान में ये बहुत बड़े हैं। संबोधन में सुश्रोणी कहे हे परम सुंदरी, तो इस पर चक्रवर्ती पाल जी कहते हैं भगवान ने कहा कि तुम शरीर से सुंदर हो परंतु तुम ज्ञान और भक्ति में चित्रकेतु के समान सुंदर नहीं। देख लिया ना भगवान के भक्तों के भक्त कितने बड़े होते हैं। तुमने साप दे दिया, तुमको क्रोध आ गया, लेकिन उस महात्मा को साप सुन करके भी क्रोध नहीं आया। वे चाहते तो तुमको साप दे सकते थे, उनमें शक्ति है, लेकिन साप सह दिए। क्रोध आ जाए जिस व्यक्ति में तो यह नीचता है। तुम में नख से सिख तक क्रोध भर गया केवल बात सुन करके, और तुमने इतना प्रचंड दंड दे दिया, असुर होने का साप दे दिया। प्रकारांतर से भगवान शिव कह रहे थे कि तुम अपने में और चित्रकेतु में विचार करके देखो कौन कैसा है। वह महात्मा है, भगवान का भक्त है, इतना भीषण साप नहीं देना चाहिए था। भरी सभा में भगवान बोल रहे थे, सारे मुनि लोग थे, ऋषि लोग थे, विद्याधर थे, चारण भरे पड़े थे, और सबके बीच में भगवान शिव कहे, विद्याधर चित्रकेतु की महिमा बताए, कितना बड़ा भक्त। तुम्हारे कठिन साप को सुनकर भी क्रोध नहीं आया। वे प्रेम से माता जी कह रहे थे और तुमने असुर बनाया उनको। ये बात तो शुरू में ही भगवान शिव कह सकते थे, लेकिन जैसा मैं कहा कि जब स्त्री बोलने लगती है तो उसको होश नहीं रहता है कि मैं कहां बोल रहा हूं, आकाश पताल एक कर देती है। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं कि स्त्रियों को पुरुष की अपेक्षा कम बुद्धि होती है, यहां स्पष्ट लिखे हैं। और इतना बड़ा समाज है उसमें भी महादेव की गृहिणी है, सबसे बड़े देवता, तो उनके उस देवता के पत्नी की यह दशा, क्षण भर में बात बिगड़ गया। चित्रकेतु आए थे कैलाश तो उनका स्वागत होना चाहिए, उल्टे उनको राक्षस बना करके भेज दिया। भगवान शिव भूतों की सभा में जहां भैरव बैठे थे और गणेश जी बैठे थे, विनायक, उन सबको सुना करके बोल रहे थे, अपनी पत्नी को डांट रहे थे, तुमने बहुत गलत किया, साप दे करके। लेकिन अब तो साप हो चुका था, देवताओं के मुख से जो निकलता है फिर लौटाना कठिन होता। और पार्वती जी उसको सुनकर के लज्जित हुई, और लज्जित होने पर चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि वे अपने घूंघट से अपने सिर को ढांक लें। जो पहले बहुत उत्साह से बोल रही थी और शिव जी के बात को सुन करके भी लजा गई, मन में अफसोस हुआ कि मैं बहुत गलत कर दी, इतने बड़े वैष्णव को भक्त को मैंने यह दंड दिया, अफसोस हो रहा था। भगवान शिव जो बोलते हैं उसी को हम यहां पढ़ रहे हैं। दिष्टवत्त शिशु श्रोणी हरे अद्भुत कर्म महात्म्यम भृत्य भृत्या नाम निस्पृहण महात्मा। हे परम सुंदरी, तुमने देख लिया ना कि भगवान के भक्तों के भक्तों की क्या महिमा है। चित्रकेतु नारद जी के भक्त हैं, नारद जी भगवान के भक्त हैं, इससे भगवान विचित्र कर्म करते हैं, अद्भुत कर्म। अद्भुत कर्मा भगवान के भक्त के भक्त की महिमा देख लिया ना, भक्त के भक्त की महिमा, क्या बड़ापन है। नारायण पराह सर्वे न कुतस्थन विभ्यति, स्वर्गाप वर्ग नर के सुखित तुल्यार्थ दर्शन। भगवान नारायण के भक्त कहीं नहीं डरते हैं, कुतस्थन न विभ्यति, स्वर्ग अपवर्ग नरके अपितुल्यार्थ दर्शन। उनको स्वर्ग में अपवर्ग में मोक्ष में वैकुंठ में और नरक में एक ही वस्तु दिखती है, वो है भगवान की सेवा। अपितुल्यार्थ दर्शन, वे स्वर्ग के भोग में आसक्त नहीं होते हैं न तो अपवर्ग में आसक्त होते हैं। स्वर्गापवर्ग नरकेशु, यदि उन्हें नरक में भी जाना पड़े तो वहां भी भगवान की सेवा देखेंगे, चाहे स्वर्ग में रहेंगे तो वहां भी भगवान की सेवा देखेंगे, भगवान के चरण को देखते हैं। उनको और दिखाई नहीं देता है कि यहां बहुत बड़ा सुख है, यहां रहना चाहिए, वो केवल भगवान की सेवा देखते हैं। तो इतने बड़े पद पर थे चित्रकेतु, बहुत बड़े राजा विद्याधरों के, अब तुमने उनको एकाएक स्वर्ग से गिरा दिया साप दे करके, पर इनको कोई दुख नहीं है। उनकी दृष्टि में स्वर्ग अपवर्ग और नरक एक समान है। स्वर्गापवर नर के सपितुल्यार्थ दर्शन, देह नाम देह संजोगात द्वंदन ईश्वर लीलय सुखम दुखम मृत्यु जन्म। सापो अनुग्रह अच्छा, इस संसार में अपने कर्म के अनुसार विविध शरीर धारण करके भौतिक जगत में बहुत से जीव घूमते रहते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वे द्वंद में पड़ने पर भी द्वंदानी जो एक साथ रहते हैं, सुख और दुख, हानि और लाभ, साप अनुग्रह, ऐसे द्वंद्व पड़ जाते हैं, लेकिन द्वंद्वों में पड़ने पर भी वे सुख में न तो आसक्त होते हैं और न दुख से घबराते हैं। इसका कारण है वासुदेवे भगवती। भगवान कृष्ण में जो भक्ति अर्जित कर लिए हैं, भगवान के भक्त हैं, उनके लिए अब ज्ञान वैराग्य से ज्ञान वैराग्य के आश्रय में नहीं रहना पड़ता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भगवान के भक्ति में लगे हुए हैं उनको अपने आप ज्ञान हो जाता है, और जब ज्ञान हो जाता है तो इस दुख में भौतिक जगत से वैराग्य भी अपने आप हो जाता है। तुमने देखा ना कि कितना बड़ा वैराग्य है चित्रकेतु महाराज में। असुर योनि में जाने का उनको कोई दुख नहीं, क्योंकि ये सब जगह केवल भगवान की भक्ति देखते हैं, भगवान की सेवा देखते हैं। वासुदेव भगवती भक्ति मुद्वहताम ऋणाम। ज्ञान वैराग्य विद्या नाम नेह कश्चित व्यपाश्रय। किसी की कमी नहीं रहती है ज्ञान की और वैराग्य की। दूसरे साधकों को या विद्वानों को, मायावादी सन्यासियों को बहुत चिंता रहती है कि हमको ज्ञान हो जाए, हमको वैराग्य रहे, हम कहीं संसार में फंस न जाए, कहीं आसक्ति न हो जाए। लेकिन भगवान के भक्त इसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। इतनी भक्ति रहती है कि अपने आप उनका मन संसार को त्याग देता है, ज्ञान बढ़ा रहता है भक्तों के मन में। यही सिद्धांत है वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रज्वलित जनयत आसु वैराग्यम ज्ञानम च जदहेतुकम। अपने आप भगवान की भक्ति करने पर ज्ञान वैराग्य हो ही जाते हैं। ये जो आए थे चित्रकेतु महाराज, ये बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, भगवान शिव कहते हैं। तस्चायम महाभागस चित्रकेतु प्रियोनुमा। ये बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान के प्रिय हैं और उनके सेवक हैं। ये भी कहते हैं शिव जी की ये भगवान के प्रिय हैं और मैं भी भगवान का प्रिय हूं। अहम च अच्युत प्रिय, मैं भी भगवान का प्रिय। चित्रकेतु महाराज सब जगह सम दृष्टि रखते हैं, शांत हैं, भगवान के भक्त हैं, प्रिय हैं, अनुगामी है, और मैं भी भगवान का प्रिय हूं। तो एक प्रकार से हमारे सखा हैं, मैं भगवान का भक्त हूं, वे भी भगवान के भक्त हैं। तुम इस रहस्य को नहीं जान पाए, तुमको क्रोध आ गया है। तस्मान न विस्मय कार्य। अब विस्मय मत करो, आश्चर्य मत करो। भक्तों में, भगवान के महान भक्तों में वैसे ही चमत्कार होता है जैसे भगवान चमत्कार करते हैं। भगवान की लीलाएं विचित्र होती हैं, वैसे ही भक्तों की भी स्थिति है। भक्त में और भगवान में अंतर नहीं है। अंतर इतना ही है कि एक प्रभु है, स्वामी है और एक सेवक है, इतना ही अंतर, और ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो जैसे मैं कुछ आचरण करता हूं तो ऐसे ही चित्रकेतु कुछ कह दिए, इन तुमको विस्मय नहीं करना चाहिए। आश्चर्य तो दोनों किए थे, भगवान शिव भी आश्चर्य में पड़ गए, यद्यपि मजाक किए थे पर आश्चर्य में पड़ गए। जब पार्वती जी ने साप दिया तब बदले में चित्रकेतु कुछ गाली नहीं दिए, या साप क्षमा कराने की प्रार्थना नहीं की, इससे विस्मय हुआ। और बाद में जब पार्वती देखी कि इतना शांति से सबको प्रणाम करके और वे चले गए, तब बड़ा विस्मय हुआ, हक्का बक्का रह गए कि इतना बड़ा महान पुरुष मैंने देखा नहीं। तब भगवान शिव कह रहे हैं विस्मय मत को, क्योंकि ये भगवान के भक्त हैं। भक्त में वही सब विशेषता होती है जो भगवान में होती है। और अंत में उन्होंने कह दिया कि ये भगवान के प्रिय हैं, सेवक हैं, और मैं भी भगवान का प्रिय हूं। तो वे हम पर कुछ मजाक कर रहे थे, तुमको दुख लग गया, हमें तो कोई दुख नहीं हुआ। मैं एक बार अपने गांव में एक कथा कहा था, ऐसे अपनी बुद्धि से कह दिया था बहुत बरस पहले कि अब शिव जी नाम नहीं लेंगे पार्वती जी को अपनी गोद में बैठाने का, ऐसे बोल दिया। लेकिन ये प्रपर्ट सब पढ़ा नहीं था पहले, लेकिन ये गलत बात है कहना कि शिव जी अब सावधान हो गए, अब पार्वती जी को साथ लेकर के प्रवचन नहीं करेंगे। अपनी बुद्धि से मैंने कह दिया था, लेकिन चित्रकेतु की महानता इसमें है कि वे पार्वती जी को साप नहीं दिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि चित्रकेतु में बहुत शक्ति थी, वे पार्वती जी को साप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने सब सह दिया। और एतावत साधु लक्षण, यही है साधु का लक्षण। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं यही है साधु का लक्षण, सह लेना सब कुछ, दूसरे के अपराध को सह लेना, बदले में साप नहीं देना, गाली नहीं देना, यही है साधु का लक्ष्य। तो सुखदेव गोस्वामी ने भी कह दिया कि ये सबसे बड़ा वैष्णव साधु का लक्ष्य यही है। इतना बड़ा दंड देने पर भी उनको क्रोध नहीं आया। माता पार्वती जी अपने बैलेंस को खो दी, कितना घोर क्रोध हुआ, लेकिन चित्रकेतु को इतना कठिन दंड पाकर भी क्रोध नहीं आया। सुख में उनको कोई राग नहीं है, जब राग नहीं है तो कुतय व रोषा, क्रोध कैसे आएगा। क्रोध आता है अटैचमेंट से, ध्याय तो विषयानुपुंसा संघर्ष उपजायते संगत समझायते कामा, कामत क्रोधो भी जाए, विषयों का ध्यान करने से उसमें आसक्ति हो जाती है, आसक्ति होने से उसको भोगने की कामना होती है, और कामना होती है जब मनुष्य की कामना में बाधा पड़ती है तो वही कामना क्रोध का रूप धारण करती है। तो कामना है ही नहीं सुख भोगने की, तो क्रोध कैसे आएगा। इतिहास को सुना करके सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कोई ही व्यक्ति महाराज चित्रकेतु के इस इतिहास को पढ़ेगा तो सब प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाएगा, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, और मुक्त होकर के भगवान के धाम में जाएगा, भगवान की सेवा में। इसे कहते हैं, इति श्रुत्वा भगवत शिवस्य उमाभिभाषितम् बहुवसंतधीराजन् देवी विगत विस्मय। भगवान शिव ने जब इस प्रकार से कहा, चित्रकेतु की बड़ाई किया, तब माता पार्वती जी शांत हो गए, उनका क्रोध ठंडा हो गया, अफसोस हो रहा था कि मैं इतने बड़े भक्त को क्यों साप दी। इसी श्लोक की टीका में चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि माता पार्वती जी अपने वस्त्र के साड़ी आंचल से अपने मुख को ढांक दी। इति भागवतो देव्या प्रतिशतमलम तमा, ये महान भागवत चित्रकेतु महाराज देवी जी को श्राप देने में समर्थ थे, अलम तमा, लेकिन माता पार्वती के श्राप को उन्होंने हाथ जोड़ करके स्वीकार कर दिया। एतावत साधु लक्षण, यही वैष्णव का लक्षण है। वही चित्रकेतु जगे त्वष्टुर दक्षिणाग्न दानवीं जोनिवास, त्वष्टा के दक्षिणाग्नि में यज्ञ में वही प्रकट हुए चित्रकेतु महाराज दानवी जोनि में। असुर जोनि में वृत्र इति विख्यात, उनका नाम था वृत्रासुर। एतत्ते सर्वमाख्यातम जन्मम तुम परिपृच्छसि, जो तुम पूछ रहे हो कि ये वृत्रासुर इतने महान भक्त कैसे हो गए और असुर होकर के भक्ति क्यों किए, युद्ध में इतनी अचल बुद्धि कैसे रह गई कृष्ण, ये समय तुमको सुना दिया। कारणम भगवान मते, कैसे भगवान ने उनका मन लगा, ये आश्चर्य कर रहे थे पृथ्वी परीक्षित महाराज कि इतना बड़ा असुर भक्त कैसे हुआ, और भक्त जब है तो असुर कैसे है, तो असुर हो गया वो तो माता पार्वती जी के श्राप से, और भक्ति का संस्कार पड़ा था नारद जी के संग से, अंगिरा जी के संग से, तो इतिहास मैंने सुना दिया, इतिहासम इमम पूर्ण इतिहास है, पवित्र इतिहास है। इस कथा को सुनेगा तो श्रुत्वा बंधन विमुच्यते, बंधन से, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति प्रातः उठ करके भोर में इस इतिहास को पढ़ेगा, पाठ करेगा, तो वह भगवान के पास, भगवान की सेवा में चला जाएगा। स्वजाति परमाम गति, परम गति प्राप्त करेगा इसको पढ़ने वाला। ये इतना पवित्र इतिहास है, इसको कोई पढ़े भोर में तो परम गति को प्राप्त करेगा। सबसे श्रेष्ठ गति है जीव के लिए भगवान का पार्षद बन करके उनकी नित्य सेवा में चले जाए, यही परम गति है। स्वर्ग आदि से कई गुना श्रेष्ठ है, वैकुंठ प्राप्त होता है। ये परम गति है भगवान के धाम में भगवान का सेवक बन करके रहना। स्वजाति परमाम गति, यह इस इतिहास को पढ़ने की महत्ता है और सुनने की दोनों बताए। सुनने से भौतिक बंधन से मुक्त हो जाएगा जीव, और पढ़ने से परम गति को प्राप्त करेगा, श्रेष्ठ गति। जय श्री लता।